दिव्या उपन्यास का खंड संख्या 10 सांगल। 6 वर्ष 4 मास और 6 दिवस के प्रवास के पश्चात नक्षत्र द्वारा निर्दिष्ट शुभ लग्न में संध्या वेला आचार्य प्रवर्धन के पुत्र आचार्य रुद्रधीर ने पूर्व द्वार से पुनः सांगल नगरी में प्रवेश किया। रुद्रधीर यात्रा के साधारण वस्त्र पहने थे और यात्रा से श्रांत परंतु वलिष्ठ अश्व पर आरूढ़ थे। उनके पीछे अश्वरोही दास संभ्रक था। सांगल के वाह रूप में आचार्य ने विशेष परिवर्तन न देखा। हाट और पूर्ण जनाकीर्ण और व्यस्त थे। जिनके यातायात के कारण मार्ग से उठने वाली धूलि से बचने के लिए व्यापारियों ने अपने हाटों के सम्मुख जल छिड़क कर मार्ग को भिगो दिया था। सब ओर व्यस्तता थी। आमोद के संकेत का भी अभाव न था। पुष्पों के विक्रेता नव स्फुटित पुष्पों की मालाओं और डलिया लिए पुकार लगाकर रसिकों का ध्यान आकर्षित कर रहे थे। गंधियों की हाटों से उड़कर अनेक प्रकार के सौरभ कोलाहलपूर्ण वातावरण में रच रहे थे। नागरिक सुंदर वस्त्र और पुष्प धारण किए सुगंध रचाए इठलाते चल रहे थे। समृद्ध जन शिविकाओं रथों और अश्वों पर संध्या विनोद के लिए पुष्पकर्णी उद्यान अथवा नर्तकियों के स्थान की ओर जा रहे थे। भीड़ में मुंडी सन्यासी भी दिखाई दिए जाते थे। अपने कार्य और विनोद में व्यस्त जन ने नवांगुत अश्वरोही की ओर ध्यान न दिया। उस अत्यंत सामान्य स्थिति में पहचाने जाने की इच्छा रुद्रधीर को भी न थी। राजपथ में आचार्य प्रसाद के लिए मार्ग ग्रहण करते समय सहसा तुर्य का शब्द सुनकर रुद्रधीर ने घूमकर पीछे की ओर देखा। जनाकीर्ण मार्ग पर सैनिक वेशधारी एक अश्वारोही रजत का छोटा तूर्ण बजाता चला आ रहा था। तुर्य का शब्द सुनकर पदादित मार्ग छोड़कर हटते जा रहे थे। अश्वारोही के पीछे एक जैसे रंगीन वस्त्र धारण किए 16 वाहकों के कंधों पर एक प्रकांड शिविका थी। शिविका पर छत्र और चवर के नीचे रत्न जड़ित आभूषणों से जगमगाती एक वेश्या बैठी जान पड़ी। श्रृंगार और प्रसाधन की अधिकता के कारण उसे पहचानने में रुद्रधीर को दुविधा हुई। शिविका के दक्षिण पार्श्व में सामंत कार्तवीर के युवा पुत्र सुकृत और वाम और यमन सामंत पंडित इकृत का युवा पुत्र महेंद्र था। आचार्य के मन में दुविधा थी। निश्चय ही यह देवी मल्लिका नहीं, पौढ़ावस्था को प्राप्त नारी को पुनः यौवन दे सकना आयुर्वेद के भी सामर्थ्य में नहीं। सांगल नगरी की किस कलावती नवीन नर्तकी ने सौभाग्यवान किया है जिसका समारोह मल्लिका से भी अधिक है। जयघोष का कोलाहल कान में पड़ने से रुद्रधीर ने पुनः घूमकर पीछे देखा। हाटों पंडियों और मार्ग पर खड़े लोग नमस्कार की मुद्रा में पुकार रहे थे, महादेवी शीरों की जय, महासेनापति पृथ्वीसेन की जय। रुद्रधीर ने विस्मय से फैलकर अपने नेत्रों पर बल देकर पहचाना, शीरो। वितृष्णा से दांत पीसकर उसने मुख फेर लिया। सांगल में बीते जीवन के 35 वर्षों में ऐसा कांड उसने कभी न देखा था, न सुना ही था। राजसत्ता का चिन्ह छत्र और चवर्ण धारण करने का अधिकार मद्र के कुल गणराज के में केवल गणपति को था अथवा गणराज द्वारा सम्मानित कला की अधिष्ठात्री जनपद कल्याणी नगर श्री राजनर्तकी को। वह सोचने लगा, मद्र की मर्यादा के उल्लंघन की अधिष्ठता कैसे? क्या दास पुत्र गणपति के आसन पर बैठा? आचार्य के स्वदेश लौट आने के समाचार से मित्रवर्ग और परिजन नर नारियों से प्रसाद पूर्ण हो गया। उत्साह के समारोह में भी आचार्य रुद्रधीर गंभीर चिंता से मुक्ति न पा सके। अपने प्रवास काल में मद्र और सांगल में हुए परिवर्तनों का वृत्तांत और ब्यौरा वह चिंता से सुनते रहे। आचार्य ने शीघ्र ही परिस्थितियां हृदयंगम कर ली। सर्वसाधारण जन समाज ने मद्र और सांगल में कोई परिवर्तन अनुभव न किया। सांगल का आकाश शत्रु के आक्रमण के आकांक्षा से मेघों से शून्य था। गण परिषद में निरंतर चलने वाले कुलों की स्पर्धा का झंझावात भी शांत था। व्यापार और समृद्धि बढ़ते दिखाई दे रही थी। विनोद और भोग के साधन बढ़ रहे थे। सर्वसाधारण जन निश्चिंत व्यस्त और सुखी था। सांगल के समाज के उपाधान में साधारण पेड़ पौधे लता कुंज और वनस्पति लहरा रहे थे, परंतु अभिजात वंश और कुल रूपी महावृक्ष अस्तभ्य और सत्रस्त खड़े थे। महासेनापति गणपति मिथोदर्श पक्षाघात रोग से सया पर पड़े थे। उदरशील से पीड़ित पुत्र के वियोग से नृत्साह और श्रेष्ठ प्रस्त के छल से प्रास्त और हत प्रीतभ्य आचार प्रवर्धन के परलोक प्राप्त कर लेने पर 2 वर्ष तक गण परिषद की सभा आमंत्रित न हुई थी। युद्ध के संक्रमण काल में महासेनापति गणपति द्वारा ग्रहण किए गए सर्वाधिकार अब भी उन्हीं के अधिकार में थे। रोगग्रस्त गणपति सैया पर थे और उनकी राजकीय मुद्रा उनके परम विश्वस्त और जनता के परम आदर भाजक महाश्रेष्ठी पृष्ठ के हाथ में थी। केंद्रस के आक्रमण के समय गण के अग्रहार सामंतों की अनुमार्जित संपत्ति की आज गणकोश में सम्मिलित कर लेने पर जब मद्र में पर्याप्त सैन्य दल के लिए धन संचय न हो सका, पृष्ठ की मंत्रणा से गणपति ने 100, 200 और 500 सैनिकों का भरण पोषण करने के लिए गण को धन की सहायता देने वाले धनकों को भी गण परिषद में सदस्यता का आसन अर्पित कर उत्साहित और सम्मानित किया। गण परिषद के सदस्यों की संख्या दूनी हो गई। इस प्रकार के 10 सदस्य महापृष्ठी पृष्ठ का प्रश्रय पाकर गण परिषद में उपस्थित थे। पुत्र के वियोग से निरुत्साह और श्रेष्ठी पृष्ठ के छल से परास्त और हतप्रीतभ्य आचार्य प्रवर्धन के परलोक प्राप्त कर लेने पर 2 वर्ष तक गण परिषद की सभा आमंत्रित ही नहीं हुई थी।